वे दोनों बेड पर लेट चुके थे, एक दूसरे की तरफ चेहरा किए। कमरे की हल्की रोशनी में उनकी निगाहें आपस में उलझी हुई थीं। आर्यन ने मुस्कुराते हुए सानवी के बालों को उंगलियों से सहलाया और धीमे स्वर में बोला, मैं कहता हूं अब इस शादी को असली बना लेते हैं। सानवी ने उसकी आंखों में झांका, जैसे शब्दों का मतलब टटोल रही हो, फिर हल्की सी हंसी के साथ बोली, हाँ कल वकील से बात कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। सही है, सानवी ने खुद से ही दोहराया। आर्यन ने सिर हल्का सा हिलाया। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए वकील की कोई जरूरत नहीं, उसने कहा और शरारती चमक के साथ जोड़ा, पहले ये बताओ तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? उसकी शरारत सानवी समझ नहीं पाई। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर साफ साफ बोली, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ठीक है, आर्यन मुस्कुराया। वो झुका और उसके होठों पर ठहर गया, एक लंबा गहरा किस। सानवी की सांसें उलझ गईं, पल भर को दुनिया थम सी गई। जब उसने छोड़ा तो दोनों की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह तोड़ देते हैं, आर्यन ने कहा और फिर से उसके करीब आने लगा। सानवी ने हल्के से हाथ आगे बढ़ाकर उसे रोका, ये क्या कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा हूं, वो मुस्कुराया, शादी को असली नहीं बनना क्या? अब सानवी को उसकी बात समझ आ गई थी। उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया, उसने नजरें झुका ली और धीमे से कहा, ठीक है। आर्यन करवट बदलकर उसके ऊपर झुका। सानवी ने हाथ बढ़ाकर लाइट बंद कर दी। अंधेरे में सिर्फ उनकी सांसें थीं जो एक दूसरे में घुलती जा रही थीं। कमरे की खामोशी में दिलों की धड़कनें और बढ़ती नज़दीकियों की आहट गूंज रही थी, मानो कोई पुराना समझौता सच में टूट चुका हो और उसके साथ एक नई शुरुआत जन्म ले रही हो। अगली सुबह आर्यन और सानवी देर तक सोते रहे। पिछली रात दोनों के लिए सुकून और अपनापन लेकर आई थी, इसलिए देर से जागना तय था। कमरे में धूप की हल्की किरणें फैल ही रही थीं कि आर्यन का फोन बज उठा। उसने मुश्किल से आंखें खोली और स्क्रीन देखी, शिव मेहता का कॉल था। अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे? उधर से आवाज आई, मीटिंग शुरू होने वाली है। आर्यन ने घड़ी की तरफ देखा और झट से सीधा बैठ गया। इतना टाइम हो गया, उसने खुद से बुदबुदाया, फिर फोन पर बोला, बस निकल रहा हूं। फोन रखते ही उसकी नजर सानवी पर पड़ी। वो उसके बाजू में चैन से सो रही थी, चेहरे पर वही सुकून जो रात भर ठहरा रहा था। आर्यन एक पल को उसे यूं ही देखता रहा, फिर हल्के से बोला, सानवी उतना है, काफी देर हो गई है। सानवी ने आंखें खोली, घड़ी देखी और झटके से उठने लगी। अगले ही पल उसे अपनी स्थिति का एहसास हुआ तो वो मुस्कुराते हुए फिर से कंबल में सिमट गई। आप वॉशरूम चले जाइए, उसने आंखें झुकाकर कहा, मैं तभी उठकर कपड़े पहनूंगी। आर्यन ने शरारत से कहा, मैं हेल्प कर देता हूं ना? सानवी ने उसे आंखें दिखाई। आर्यन हंस पड़ा, उसके कपड़े उठाकर उसे पकड़ा दिए और खुद वॉशरूम चला गया। थोड़ी ही देर में दोनों तैयार थे। आर्यन फाइलें उठाते हुए बोला, तुम एक बार रेस्टोरेंट चली जाओ और आज दोपहर के बाद तुम्हें और जय को कहीं बाहर भेज रहा हूं, मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, समझी? लेकिन रेस्टोरेंट, सानवी ने कहना चाहा। फिक्र मत करो, आर्यन ने बात काटी, रेस्टोरेंट मैं संभाल लूंगा। और हाँ, आज तुम्हारी बैंक की सारी इंस्टॉलमेंट क्लियर हो जाएंगी, बीच में मत बोलना, मेरी बात सुनो। वो उसके सामने रुका और नरमी से बोला, अब हमारी शादी असली है तो पति के पैसे पर तुम्हारा पूरा हक है, जो चाहे करो, जहां चाहे खर्च करो। सानवी कुछ कहना चाहती थी पर आर्यन आगे बोल पड़ा, और अगर चाहो तो कीर्ति और रिया को भी साथ ले जाना, तुम तीनों साथ रहोगी तो मन भी लगा रहेगा और जय का भी। सानवी ने हल्की हैरानी से पूछा, आप कीर्ति से नाराज नहीं हैं? आर्यन ने बिना सोचे कहा, जब मैं तुमसे नाराज नहीं हूं तो तुमसे जुड़े लोगों से कैसी नाराजगी? तुम तीनों जाओ जय को लेकर। सानवी के चेहरे पर राहत फैल गई, उसने सिर हिलाया, ठीक है जैसा आप कहें। गुड गर्ल, आर्यन ने मुस्कुराकर कहा। दोपहर के बाद उसने सानवी, कीर्ति और रिया को जय के साथ शहर से दूर भेज दिया। अब जब वो सानवी और जय को लेकर निश्चिंत था तो उसका ध्यान उस काम पर टिक गया जिसे वो टाल नहीं सकता था। विक्रांत के खिलाफ कार्रवाई करनी थी और उसके लिए इंदर से बात करना जरूरी था। आर्यन की आंखों में अब सुकून के साथ साथ दृढ़ता भी थी। ये सिर्फ एक शुरुआत। अगली सुबह घर में अलग ही चहल पहल थी। रेहान के दोस्त और उसकी बहन अरमान से मिलने आने वाले थे। सुबह से ही घर की फिजा बदली बदली सी थी। कोई पर्दे ठीक कर रहा था, कोई सोफे के कुशन सजा रहा था, तो कोई बार बार घड़ी देख रहा था। अरमान के घर के हॉल में माहिरा, अरमान और सादिया खड़े थे। तीनों की निगाहें कभी दरवाजे की ओर जाती तो कभी एक दूसरे पर टिक जाती। तभी रेहान तेज कदमों से हॉल में दाखिल हुआ। वो निकल चुके हैं, बस आने ही वाले हैं, रेहान ने कहा। ये सुनते ही माहौल में हल्की सी बेचैनी घुल गई। तभी रेहान की नजर सादिया पर पड़ी। सादिया ने एक खूबसूरत डिजाइनर सूट पहना हुआ था, बाल सलीके से सजे थे और चेहरे पर मेकअप था, थोड़ा ज्यादा चमकता हुआ। रेहान ने भौंरी चढ़ाई और कहा, अरे सादिया, ये तुमने क्या पहन लिया है और ये मेकअप ही कुछ ज्यादा नहीं हो गया? सादिया थोड़ा सक पकाई। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो मैं अभी चेंज कर लेती हूँ, उसने धीमे से कहा। नहीं नहीं, अब रहने दो, रेहान ने तुरंत कहा, वो लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। रेहान ये कहकर हॉल से बाहर निकल गया। रेहान के जाते ही माहिरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ जानबूझकर ताना मारते हुए कहा, वैसे अगर तुम चेंज कर लोगी और मेकअप कम कर लोगी तो तुम्हारा असली चेहरा दिख ही नहीं पाएगा। सादिया को माहिरा की बात चुभ गई, लेकिन वो कुछ कह पाती उससे पहले ही कमरे से बाहर आती हुई रेहाना बेगम ने बात संभाल ली। अरे छोड़ो इन बातों को, रेहाना बेगम ने प्यार से कहा, सादिया वैसे ही कितनी प्यारी है, इसे मेकअप की कोई जरूरत नहीं। रेहाना बेगम की बात सुनकर सादिया के चेहरे पर सच्ची सी खुशी फैल गई, उसकी आंखों में चमक आ गई। वहीं माहिरा चुप हो गई, उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। सादिया ने नजर घुमाकर अरमान की ओर देखा। और तुम? सादिया ने हल्के से पूछा, तुमने अभी तक चेंज भी नहीं किया? माहिरा ने तुरंत जवाब दिया, मेरा भाई वैसे ही इतना स्मार्ट है, इसे तैयार होने की क्या जरूरत। सादिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ माहिरा की ओर देखा और जानबूझकर कहा, बिल्कुल, अगर अरमान किसी लड़की को देखने जाता तब तो बात और होती, लेकिन यहाँ तो लड़की अरमान को देखने आ रही है, ऐसे में थोड़ा तैयार तो होना ही चाहिए। हॉल में एक पल के लिए खामोशी छा गई। इस वक्त गेट पर दो लोग खड़े थे, एक अधेड़ उम्र का आदमी और उसके साथ एक लड़की। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक रखा था। उसी समय फैजान, जो लॉन से होता हुआ घर के अंदर जा रहा था, उसकी नजर गेट पर पड़ी। उसने रुककर दोनों को ध्यान से देखा और फिर बाहर की ओर बढ़ाया। ये ताया अब्बू के मेहमान है, फैजान ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा। उन्होंने बताया था कि आज कोई आने वाला है, इन्हें अंदर आने दो। सिक्योरिटी गार्ड ने सिर हिलाया। जी मैं भी जानता हूँ, उसने आदर से कहा, लेकिन पूछना तो फर्ज बनता है। इतना कहकर उसने गेट खोल दिया और दोनों को अंदर जाने का इशारा किया। इधर घर के अंदर मेड तेजी से हॉल में आई और बोली, वो लोग आ गए हैं। चलो चलो, सादिया ने तुरंत कहा। फिर उसने अरमान की तरफ देखा और जानबूझकर हल्के तंज के साथ बोली, वैसे अरमान, उनके सामने अच्छे से पेश आना, और हाँ, पता है ना कैसे चलना है उनके आगे। सादिया की ये बात माहिरा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वैसे भी माहिरा और सादिया की कभी खास बनी नहीं थी, अरमान से भी सादिया की नोकझोंक चलती ही रहती थी, तीनों अक्सर एक दूसरे की खिंचाई करते रहते थे। माहिरा ने तुरंत पलटकर कहा, ठीक है, लेकिन लड़की भी तो ऐसी होनी चाहिए जो मेरे भाई को पसंद आए। लड़की देखने आ रही है तो मेरे भाई को भी तो उसे देखना है, अरमान हल्की मुस्कान के साथ बोला। तो सुनो, मैं बता देता हूँ कि मुझे कैसी लड़की पसंद आएगी। अच्छा, सादिया ने दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा, बताओ। अरमान ने सोचते हुए कहा, ब्राउन बाल, तीखी नाक, लंबी लंबी पलकें और नीली आंखें। वो जैसे अपनी कल्पना की दुनिया में खो गया था।
हाँ, ब्राउन हेयर, तीखी नाक,